नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। चार दिन के इस आयोजन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन में सीईओ गोलमेज सम्मेलन, तकनीकी सत्र, प्रदर्शनियां और व्यावसायिक विचार विमर्श सहित कई सत्र आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। श्री मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। ये व्यापार प्रदर्शनी 29 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी पीएम कुसुम लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल भारत के जहाज निर्माण और समुद्री परितंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार और ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है और ये 10 ईयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। इंजन मेकिंग चालू होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं।
श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,91,000 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की 2021-22 और 2025-26 की अवधि के 2,277 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने देश में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के व्यापक विस्तार को भी मंजूरी दी है। केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तीसरे चरण में 5,000 PG सीटें और CSS के विस्तार से 5,023 MBBS सीटें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को 2,192 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति SCC ने जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में सेवा विस्तार मंजूर कर लिया है। वे 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य कार्य विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की 6ठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर शीर्ष निकाय लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनकी बातचीत होती रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कल शाम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य के 26 सितंबर से खुलने की घोषणा की। शुरुआत में उद्यान का बागोरी रेंज खोला जाएगा। कोहोरा रेंज के 1 अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में खुलने की संभावना है और हाथी सफारी 1 नवंबर से शुरू होगी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कोलकाता और उपनगरों के कई इलाकों से पानी कम हो गया है, लेकिन कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। खेलों में भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर फोर में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया और एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अभिषेक शर्मा को 75 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज बांग्लादेश दुबई में रात 8 बजे से एक और सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।